इप्सिता ने अथर्व की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी अथर्व सर, बट। इप्सिता बोली रही थी कि अभिमन्यु अथर्व की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, वेट अ मिनट, तुम इप्सिता के साथ कॉफी पीने के लिए क्यों बोल रहे थे? तुम तो उनके बॉस हो ना, तो फिर हमें नहीं लगता कोई भी बॉस अपनी किसी एम्प्लॉय के साथ कॉफी पीने के लिए बोलता है। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु काफी जलन महसूस कर रहा था। उसने ये बात अथर्व को घूरते हुए ही कही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी अथर्व को कच्चा चबा जाएगा। इप्सिता ने अभिमन्यु और अथर्व दोनों की तरफ देखा। वे दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। इप्सिता ने अपने मन में सोचा, हमें कोई बहाना तो ढूंढना होगा, वरना अथर्व तो एक के बाद एक सवाल पूछते जाएंगे, और अभिमन्यु, वो तो अथर्व सर से डरने वाले हैं नहीं। क्या करें, हम कैसे इन दोनों को एक दूसरे से दूर करें? इप्सिता यही सोच रही थी तभी उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अथर्व सर, लिसन टू मी प्लीज, एक्चुअली हमारा इनसे बात करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए हमने आज स्टूडियो से लीव ले ली। आप प्लीज अब यहाँ से जाइए, हम कल स्टूडियो में आपसे इस बारे में बात करते हैं, और रही बात कॉफी की, तो हम आपके साथ कॉफी पर भी चलेंगे और आपको सब कुछ समझा देंगे, बट प्लीज अभी आप यहाँ से चले जाइए। अभिमन्यु ने इप्सिता की बात सुनते ही हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक मिनट इप्सिता, आप क्यों उनके साथ कॉफी पर जाएंगी? ये तो आपके बॉस है ना, आप क्या बोल रही हैं, आपको समझ में भी आ रहा है? इप्सिता ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु प्लीज एक मिनट के लिए आप चुप रहेंगे, हम बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल आप बात करिए, लेकिन आप क्या बात कर रही हैं इस बात पर भी ध्यान दीजिए, आप ऐसे किसी के साथ कॉफी पर जाने के लिए कैसे मान सकती हैं? अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा। इप्सिता ने अपनी आंखें बंद की और गुस्से से चिढ़ते हुए कहा, अभिमन्यु कैन यू प्लीज बी क्वाइट जस्ट फॉर अ मिनट? अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हम चुप नहीं रहेंगे। अथर्व अभिमन्यु को घूर रहा था। अभिमन्यु जिस तरह इप्सिता से बात कर रहा था और जिस तरह वो उस पर अपना अधिकार जता रहा था, ये देखकर अथर्व को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। अथर्व कुछ बोल पाता उससे पहले ही इप्सिता ने अथर्व का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज सर अभी आप यहां से जाइए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अभिमन्यु ने इप्सिता को अथर्व का हाथ पकड़ते हुए देखा। उसने तुरंत इप्सिता का हाथ अथर्व के हाथ से छुड़ाया और इप्सिता का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, आप हमारे सामने इनका हाथ कैसे पकड़ सकती हैं इप्सिता, हाउ कुड यू? इतना बोलते हुए अभिमन्यु ने इप्सिता को अथर्व के सामने अपने बिल्कुल करीब कर लिया और इप्सिता की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल पूछ रहा था। इप्सिता ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, अभिमन्यु प्लीज काम डाउन। अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, सीरियसली इप्सिता, इतना सब देखने और सुनने के बाद भी आप हमें शांत रहने के लिए कह रही हैं? अथर्व अभिमन्यु को इस तरह इप्सिता से बात करते हुए देख रहा था। वो इप्सिता के पास आते हुए बोला, इप्सिता आखिर ये है कौन, इसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, और ये इस तरह से तुम पर इतना हक क्यों जता रहा है? अभिमन्यु ने अथर्व की तरफ घूरते हुए कहा, तुमसे क्या मतलब, हमारा इप्सिता के साथ कोई भी रिश्ता हो हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। अथर्व ने अभिमन्यु की तरफ देखा और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं और तुम्हें इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। इप्सिता मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, कौन है ये बदतमीज आदमी जिसे दूसरों से बात करने की भी तमीज नहीं है? इतना रूडली कोई किसी से कैसे बात कर सकता है? अभिमन्यु अथर्व के करीब गया। उसने अथर्व के कॉलर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी उसने इप्सिता की तरफ देखा और अपने गुस्से पर काबू करते हुए अथर्व के कॉलर को ठीक करते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये हमारा रूडली बिहेवियर नहीं बल्कि पोलाइट बिहेवियर है। शुक्र मनाओ कि हमने तुमसे इतनी इज्जत से बात की है, और अभी के अभी अगर तुम यहां से नहीं गए तो फिर रूट साइड भी शायद तुम्हें आज ही देखने को मिल जाए। अथर्व ने अभिमन्यु का हाथ अपने कॉलर से झटकते हुए कहा, हाँ तो ऐसा भी क्या कर लोगे तुम? इप्सिता ने देखा कि उन दोनों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ रही थी और वे दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े थे कि जैसे मानो अभी थोड़ी देर में वे एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। इप्सिता ने उनके बीच जाकर उन्हें एक दूसरे से दूर किया। उसने अभिमन्यु के सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अभिमन्यु प्लीज यहां से जाइए, हम यहां पर कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते, और रही बात आपसे बात करने की तो हम बाद में आपसे मिलकर आपकी पूरी बात सुन लेंगे, लेकिन प्लीज अभी आप यहां से चले जाइए। अभिमन्यु अथर्व की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, हम क्यों जाएं? अपने इस बॉस को जाने के लिए बोलो, वैसे भी हम दोनों पहले से बैठे थे, यही हमारे बीच में आकर बोला है। अभिमन्यु की बात पर अथर्व कुछ बोल पाता उससे पहले ही इप्सिता ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज सर आप भी जाइए, हम कल ऑफिस में आपसे बात करते हैं। इप्सिता इतना बोलकर अभिमन्यु को भी वहां से जाने के लिए फिर से बोली, अभिमन्यु आप भी जाइए यहां से, बस बहुत हो गया। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली इप्सिता, आपको लगता है हम यहां पर आपको अकेला छोड़कर कहीं जाएंगे? इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसका हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, आपको हमारी कसम अभिमन्यु, प्लीज यहां से जाइए और यहां पर कोई ड्रामा क्रिएट मत करिए। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ अपने सिर पर रखा, अभिमन्यु इप्सिता के चेहरे की तरफ देखने लगा। इप्सिता ने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, प्लीज अभिमन्यु, जाइए यहां से। अभिमन्यु ने इप्सिता के सिर से अपना हाथ हटाया और बिना कोई बहस किए इस बार चुपचाप वहां से बाहर चला गया। इप्सिता ने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व उन दोनों के बॉन्ड को देखकर काफी ज्यादा चिढ़ गया था, इसीलिए उसने भी इप्सिता से और कुछ नहीं पूछा और दूसरे गेट से वहां से निकल गया। इप्सिता अपना सिर पकड़कर उसी चेयर पर बैठ गई और बोली, हमारे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारे सामने एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। इप्सिता वहीं पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसने देखा अथर्व और अभिमन्यु दोनों ही वहां से बाहर जा चुके थे। इप्सिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो यही सब सोच रही थी कि तभी एक वेटर उसके पास आकर बोला, मैम कुछ लेंगे? उस वेटर के बोलने पर इप्सिता जैसे अपनी सोच से बाहर निकली और उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी लेकर आओ प्लीज, थोड़ा जल्दी, नहीं तो हमारा सिर फट रहेगा दर्द से। बहुत ही परेशान होते हुए इप्सिता ने यह कहा और वेटर तुरंत ही उसकी कॉफी लेने के लिए चला गया। दो मिनट में ही वो उसकी कॉफी लेकर आया और उसके टेबल पर रख दी। इप्सिता ने कॉफी पी और कुछ देर बाद कॉफी खत्म होते ही वो वहां से उठकर जाने लगी। इप्सिता ने अपना पर्स और फोन उठाया और वो सीधे कैफे से बाहर निकल गई। इप्सिता के दिमाग में इस समय काफी सारी बातें चल रही थी। वो अभिमन्यु के बारे में सोच रही थी। वहां से बाहर निकलकर खुद से बात करते हुए इप्सिता ने अपने मन में सोचा, आज भी अभिमन्यु से हमारी कोई बात नहीं हो पाई, अब हमें फिर से उन्हें मिलना पड़ेगा और अथर्व सर पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि हमने उन्हें तीन बार कॉफी पर चलने से मना किया और आज उन्होंने हमें यहां अभिमन्यु के साथ देख लिया। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। अभी हमारी कोई बात भी नहीं हो पाई तो हम कल स्टूडियो पहुंचकर किसी तरह से उन्हें तो समझा लेंगे, लेकिन अभी तो हमारे लिए सबसे बड़ा हेडेक अभिमन्यु है। इप्सिता अभिमन्यु के बारे में सोचते सोचते घर पहुंच गई। जब वो अपार्टमेंट में आई तो शाम के 6 बज चुके थे। जैसे ही इप्सिता अपार्टमेंट में पहुंची तो उसने देखा उदय की कार पहले से ही पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी।
उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, भाई ऑफिस से आज इतनी जल्दी आ गए क्या? अब अगर वो हमसे पूछेंगे कि हम कहाँ गए थे तो उन्हें क्या जवाब देंगे? इप्सिता लिफ्ट में थी और वो यही बात सोचने लगी। वहीं अपार्टमेंट में उदय सीधे इप्सिता के रूम में गया। उसने देखा इप्सिता रूम में नहीं थी। वो बाहर निकल कर आया और उसने नंदिनी की माँ से पूछा, मॉम इशू कहाँ है, वो अपने रूम में नहीं है? नंदिनी जो सोफे पर बैठकर पानी पी रही थी, उसने ये बात सुनते ही अपनी माँ की तरफ देखा। नंदिनी की माँ किचन से बाहर आते हुए बोली, अरे वो इप्सिता रूम में बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो गई थी तो वो नीचे गार्डन तक गई है। उदय ने ये बात सुनते ही नंदिनी की तरफ हैरानी से देखा। नंदिनी जिसके हाथ में पानी का ग्लास था, उसने पानी का ग्लास टेबल पर रखकर खड़ी हुई और उदय के बगल में आकर बोली, अगर इशू नीचे गार्डन तक गई थी तो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? उदय ने नंदिनी की तरफ देखकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन हम अभी नीचे से ही तो आ रहे हैं, हमें तो इशू कहीं पर भी नजर ही नहीं आई, है ना? नंदिनी ने थोड़ा सोचकर उदय की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ इशू तो हमें कहीं नहीं दिखी। मॉम आर यू श्योर इप्सिता नीचे गार्डन तक गई है? नंदिनी की माँ ने कहा, हाँ उसने मुझे तो यही कहा था। मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन उसने मुझे अपने साथ चलने को मना कर दिया, तो मैंने भी उसे जबरदस्ती नहीं की। उदय ने नंदिनी की माँ की ये बात सुनी तो उसके दिमाग में कई सारी बातें आने लगी। उदय को इस तरह परेशान देखकर नंदिनी ने कहा, अब आप क्या सोच रहे हैं? उदय ने धीरे से अपना सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। इतना बोलकर उसने अपना फ़ोन निकाला और वो इप्सिता को कॉल करने लगा। जैसे ही उदय ने फ़ोन में नंबर डायल किया तो इप्सिता की फ़ोन की आवाज़ उन दोनों को सुनाई देने लगी। तभी घर की डोरबेल बजी। नंदिनी भागते हुए दरवाजे के पास गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने इप्सिता खड़ी थी। उसने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, आ गई हूँ। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम तो आ गए, लेकिन तुम कहाँ गई थी? इप्सिता ने नंदिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, हम थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए गार्डन तक गई थी। आंटी ने नहीं बताया क्या? हम उन्हें बता कर गई थी। इतना बोलकर इप्सिता घर के अंदर आई। उदय वहीं हाथ बांधकर सामने खड़ा हुआ था।